श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 8 भगवान कपिल देव से सगर पुत्रों की भेंट। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, रोहित का पुत्र हरित हुआ और हरित का पुत्र चंप हुआ, जिसने चंपापुरी नामक नगर का निर्माण कराया। चंप का पुत्र सुदेव हुआ और सुदेव का पुत्र विजय था। विजय का पुत्र भरूक, भरूक का पुत्र वृक्ष और उसका पुत्र बाहुक हुआ। राजा बाहुक के शत्रुओं ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली, जिससे उसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया और अपनी पत्नी सहित वन में चला गया। जब बाहुक वृद्ध होकर मर गया तो उसकी एक पत्नी उसके साथ सती होना चाहती थी, किंतु उस समय औरव मुनि ने यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, उसे सती होने से मना किया। बाहुक की सपत्नियों ने यह जानते हुए कि वह गर्भवती थी, उसकी सौतों ने उसको भोजन के साथ विष देने का षड्यंत्र किया, लेकिन यह फलीभूत नहीं हुआ। किंतु इस विष सहित एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सगर सगर अर्थात विष सहित कहलाया। बाद में सगर सम्राट बना। गंगा सागर नामक स्थान उसके पुत्रों द्वारा खोदा गया था। सगर महाराज ने अपने गुरु औरव के आदेशानुसार तालजंद, यवन, शक, हैहय तथा बर्बर जातियों के असभ्य लोगों का वध नहीं किया, अपितु उनमें से कुछ को बेदंगे वस्त्र पहनने को बाध्य कर दिया। कुछ के सिर गुटवा दिए लेकिन मूछें रहने दी। कुछ के बालों को खुलवा दिया, कुछ के सिर आधे गुटवा दिए, कुछ को बिना भीतरी वस्त्र के कर दिया और कुछ को निर्वस्त्र कर दिया। इस प्रकार ये जातियां भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करने के लिए बाध्य की गई, किंतु राजा सगर ने इन्हें मारा नहीं। और वह मुनि के आदेशानुसार सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया और इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया, जो परम नियंता, समस्त विद्वानों के परमात्मा तथा सभी वेदों के ज्ञाता हैं। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ में बलि दिए जाने वाले घोड़े को चुरा लिया। राजा सगर के दो पत्नियां थी, सुमति तथा केशिनी। सुमति के पुत्रों ने, जिन्हें अपने पराक्रम तथा प्रभाव पर गर्व था, अपने पिता के आदेशानुसार खोए हुए घोड़े को सर्वत्र ढूंढा। ऐसा करते हुए उन्होंने पृथ्वी को बहुत दूर तक खोद डाला। तत्पश्चात जब उन्होंने उत्तर पूर्व दिशा में कपिल मुनि के आश्रम के निकट घोड़े को देखा तो वे बोल उठे, यह रहा घोड़ा चोर, यह आंखें बंद किए बैठा है, यह निश्चय ही बड़ा पापी है, मारो मारो इसे। इस प्रकार चिल्लाते हुए सगर के 60,000 पुत्रों ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। जब वे मुनि के निकट पहुंचे तो मुनि ने अपनी आंखें खोली। स्वर्ग के राजा इंद्र के प्रभाव से सगर के पुत्रों की बुद्धि मारी गई, जिससे उन्होंने एक महापुरुष का अपमान कर दिया। फलस्वरूप उनके शरीरों से अग्नि निकलने लगी और वे तुरंत ही जलकर राख हो गए। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की आंखों से निकली अग्नि से भस्म सात हुए थे, लेकिन विद्वान पुरुष इस मत की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि कपिल मुनि का शरीर नितांत सात्विक था, अतएव उससे क्रोध के रूप में तमोगुण प्रकट नहीं हो सकता। जिस तरह निर्मल आकाश को पृथ्वी की धूल दूषित नहीं कर सकती, कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया, जो अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए दृढ़ नाव है। निसंदेह भव सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को इस दर्शन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे महापुरुष में जो अध्यात्म के उच्च पद को प्राप्त हो, एक मित्र तथा शत्रु में कोई अंतर कैसे हो सकता है? महाराज सगर के पुत्रों में एक का नाम असमंजस था, जो राजा की दूसरी पत्नी केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। असमंजस का पुत्र अंशुमान था और वह अपने बाबा सगर महाराज के कल्याण कार्य में सदैव लगा रहता था। असमंजस पिछले जन्म में एक महान योगी था, किंतु कुसंगति के कारण वह अपने उच्च पद से नीचे गिर गया था। अब इस जन्म में वह राज परिवार में उत्पन्न हुआ था और जाति स्मर था, अर्थात वह अपने पूर्व जन्म को स्मरण करने में समर्थ था, फिर भी वह अपने आप को दुर्जन के रूप में दिखलाना चाहता था। अतएव वह ऐसा कार्य किया करता था जो जनता तथा उसके परिजनों की दृष्टि में गर्हित तथा प्रतिकूल होता। वह सरयू नदी में खेल करते बालकों को गहरे जल में फेंक कर उन्हें तंग करता रहता था। क्योंकि असमंजस ऐसे गर्हित कार्यों में लगा रहता था, अतएव उसके पिता ने उससे स्नेह करना छोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। तब असमंजस ने उन बालकों को जीवित करके उन्हें राजा तथा उनके माता पिताओं को दिखलाकर अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तत्पश्चात असमंजस ने अयोध्या छोड़ दी। हे राजा परीक्षित, जब सारे अयोध्या वासियों ने देखा कि उनके लड़के पुनः जीवित हो उठे हैं, तो वे चकित रह गए और राजा सगर को भी अपने पुत्र की अनुपस्थिति पर अत्यधिक पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को घोड़ा ढूंढ लाने का आदेश दिया। अंशुमान अपने चाचाओं के पद से होकर धीरे धीरे रात के ढेर तक पहुंचा और उसने उसी के निकट घोड़े को पाया। महान अंशुमान ने विष्णु अवतार कपिल नामक मुनि को देखा, जो घोड़े के निकट आसीन थे। अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दत्त चित्त होकर उनकी प्रार्थना की। अंशुमान ने कहा, हे भगवान, आज तक ब्रह्मा जी भी आपके अगम्य पद को ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ हैं, तो हम जैसों की कौन कहे जो ब्रह्मा द्वारा देवता, पशु, मनुष्य, पक्षी तथा जानवर इत्यादि के विविध रूपों में उत्पन्न किए गए हैं। हम पूरी तरह अज्ञान में हैं, अतएव हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप आपको कैसे जान सकते हैं? हे स्वामी, आप सबों के हृदयों में भली भांति स्थित हैं, किंतु भौतिक शरीर से आवृत सारे जीव आपको नहीं देख पाते, क्योंकि वे त्रिगुणमयी माया द्वारा संचालित बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। उनकी बुद्धि सतो रजो तथा तमो गुणों से ढकी होने से वे प्रकृति के इन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को ही देख पाते हैं। तमो गुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण जागृत या सुप्त जीव प्रकृति की कार्य विधि को ही देख पाते हैं। वे आप भगवान को नहीं देख सकते। हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए साधु पुरुष यथा ज्ञान के पुंज चारों कुमार सनक सनक सनंदन तथा सनातन ही आपके विषय में सोच सकते हैं। भला मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है? हे परम शांतिमय स्वामी, यद्यपि यह प्रकृति सारे सकाम कर्म तथा उनके फल स्वरूप भौतिक नाम तथा रूप आपकी सृष्टि है, तथापि आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। अतएव आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है और आपका स्वरूप भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। आप भगवद गीता जैसे ज्ञान का हमें उपदेश देने के लिए ही भौतिक शरीर के ही समान रूप धारण करते हैं, लेकिन वस्तुतः आप रहते हैं परम आदि पुरुष ही। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, जिनके मन काम लोभ ईर्ष्या तथा मोह से मोहित हैं, वे आपकी माया द्वारा सृजित इस जगत में झूठे ही घर गृहस्थी आदि में रुचि रखते हैं। वे घर पत्नी तथा संतान में आसक्त रहकर इसी जगत में निरंतर घूमते रहते हैं। हे समस्त जीवों के परमात्मा, हे भगवान, मैं अब आपके दर्शन मात्र से सारी काम वासनाओं से मुक्त हो गया हूँ, जो दुर्लभ्य मोह तथा संसार बंधन के मूल कारण हैं। हे राजा परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान का इस प्रकार महिमा गान किया तो महामुनि कपिल ने, जो विष्णु के सशक्त अवतार हैं, उस पर कृपालु होकर उसे ज्ञान का मार्ग बतलाया। भगवान कपिल ने कहा, हे प्रिय अंशुमान, यह रहा तुम्हारे बाबा द्वारा खोजा जा रहा यज्ञ पशु, इसे लो। दग्ध हुए तुम्हारे इन पुरखों का उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। तत्पश्चात अंशुमान ने कपिल मुनि की प्रदक्षिणा की और अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस तरह उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करके अंशुमान यज्ञ पशु को वापस ले आया और महाराज सगर ने इस घोड़े से यज्ञ का शेष अनुष्ठान संपन्न किया। अंशुमान को अपने राज्य की भाग दौड़ सौंप कर तथा सारी भौतिक चिंता एवं बंधन से मुक्त होकर सगर महाराज ने औरव मुनि के द्वारा उपदिष्ट साधनों का पालन करते हुए परम गति प्राप्त की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवे स्कंध के अंतर्गत भगवान कपिल देव से सगर पुत्रों की भेंट नामक आठवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।